dann ist auch noch eine kleine Gewissheit und Zerbarbeitung.
तो क्रोध से अंधे हिरण कश्यप को ले उन्होंने फिर गोद से उठाकर भूमि पर फेंक दिया। एकदम क्रोध से अंधे हो गए हिरण कश्यप, अत्यंत क्रोध तथा पिघले ताम्र जैसे कॉपर जैसे लाल लाल आंखें की हिरण कश्यप ने अपने नौकरों से कहा, अरे असुरो इस बालक को मेरी आंखों से दूर करो, यह मत करने योग्य है, इसे इतनी जल्दी हो सके मार डालो। पिता अपने पुत्र को बोला मार डालो। हिरण कश्यप मजाक नहीं कर रहा, देखते हैं कि फैमिली कहीं घूमने गए हैं, बहुत बड़े पहाड़ से नीचे देख रहे हैं, तो पिता जाने गए थे छोटे बच्चे को उठा के नीचे उठा देते हैं डराने के लिए, फिर बच्चा चौड़ा उठा लेते हैं, खुश हो जाते हैं। तो हिरण कश्यप ऐसे कोई ड्रामा नहीं कर रहे थे, मजाक नहीं कर रहे उठा के फैमिली को मार डाल, ऐसा नहीं, वास्तव में गुस्से से अंधा हो गया था और बोला इसको मार डालो। पर आज का श्लोक है अयम स्वयं हित्वा सुनो आत्मा यो विष्णु दास अर्चती। हम बोल रहे हैं उससे इतना पागल हो गया है, अंधा हो गया, उसने वो कह रहा है यह बालक मेरे भाई को मारने वाला है। आयरन ने घात रहा, ये जो है घात रहा, इसने मेरे भाई का वध किया है। क्या दराज ने भाई का वध किया था उसके? नहीं, वो इतना गुस्से में अंधा था, उसको लगा जो भी विष्णु के पक्ष में है वो बस उसने मेरे भाई को मारा है। और अपने चाचा पृथ्वी हम तो अपने चाचा जो हिरण्याक्ष का जो वध करने वाले विष्णु का एक दास बना है, अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं दो ही बातों में। ऊपर जो है कि अयम के ख्याल रहा इसने मेरे भाई को मारा है, और दूसरे कह रहे हैं कि मेरे भाई के हत्यारे अपने चाचा के हत्यारे विष्णु का ये नौकर बना हुआ है, हम सबको छोड़कर स्वान सुहृदा, हम तो इसके अपने हैं, अपनों को छोड़कर हमारे शत्रु का ये नौकर बना हुआ है, दास अर्चती ऐसा लोगों का बोल रहे हैं, अधम हमें कितना पतित है। ये हिरण्यकश्यप का विचार है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को अपने भाई का हत्यारा माना क्योंकि वे भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज को तो सारूप्य मोक्ष प्राप्त होगा, और इस तरह से भगवान विष्णु के समान थे। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से अभिन्न होते हैं, प्रतिदिन हम उसमें गुरु अष्टकम करते हैं, साक्षात हरित हुए समस्त शास्त्र। जिस तरह से एक लोहे की सरिया अगर उसको अग्नि में डाल के रखा जाए तो वो अग्नि के समान हो जाता है, इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं हिरण कश्यप को बोल रहे हैं प्रहलाद ने मेरे भाई को मारा, हालांकि उन्होंने नहीं मारा था, विष्णु ने मारा था, लेकिन हिरण कश्यप ने उन्होंने मारा। तो जब शुद्ध भक्त जो आचार्यगण होते हैं तो हर दृष्टि में हर परिस्थिति में भक्तों के भगवान के गुणगान का मौका ढूंढते हैं। जब शिशुपाल जी भगवान श्री कृष्ण की आलोचना कर रहे थे तो बड़े उल्टे सुधे अपशब्द कहे, लेकिन जो आचार्य हमने विश्वाचंद्र ठाकुर पर हर एक उल्टे से अपशब्द से एक अलग मत निकाल रहे थे, उसमें से एक नया रस निकाल रहे थे, भगवान के गुण का गुणगान कर रहे थे। यहाँ पे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद महाराज के आरोप लगा रहे हैं, इसने मेरे भाई को मारा है, और प्रभुपाद कहते हैं ठीक ही कह रहे सारूप्य मुक्ति मिल रही है, विष्णु ने मारा है, इसने मारा बात एक ही है, प्रहलाद महाराज को सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, उसमें से प्रभुपाद ये तात्पर्य में निकाल कर रहे हैं। तो वास्तव में जो भक्तों होते हैं उनको मुक्ति की इच्छा होती नहीं है। भगवान कपिल भावकर्म तीसरे सर में कहते हैं सालों के साष्टी सामिप्य सारूप्य एकत्व उपयोगता ये मानव न घृह अंति बिना मत सेवनम जना। पांच तरह की मुक्ति होती है, सायुज्य सायुज्य मतलब भगवान के लीला का ब्रह्म में लीन होना, सारूप्य भगवान जैसे ही रूप प्राप्त करना, सामिप्य भगवान के समीप रहना, सालोक्य भगवान के ही लोक में रहना, साष्टी भगवान की तरह ऐश्वर्यपूर्ण होना। तो भगवान कपिल कह रहे हैं शुद्ध भक्त सालोक्य साष्टी सामिप्य सारूप्य या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भक्तों की इच्छा मुक्ति स्वीकार करने की नहीं होती। बेलोगन ठाकुर क्या बताते हैं कि मुक्ति है भक्ति के द्वार पर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी रहती है आज्ञा प्राप्त करने के लिए, सेवा के लिए। तो भक्त लोग किसी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं रखते, देने पर भी अगर भगवान कहें ले लो मुक्ति तब भी नहीं देते। जैसे कि आगे देखेंगे नरसिंह भगवान प्रहलाद को बोले बोलेंगे चलो भगवत धाम, तो प्रहलाद महाराज क्या बोलेंगे? नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? जब तक ये सारे मूर्ख और दूर जो कि इस भौतिक जगत में दुख को सुख में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इन सबको आपका भक्त बनाकर ही मैं इन सबके साथ ही आपके भगवान के धाम जाऊंगे। प्रहलाद महाराज मुक्ति को रिजेक्ट करें, मुझे नहीं चाहिए। इसी प्रकार से महाप्रकाश लीला में हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने सब अपने पार्षदों को बुलाया था, तो खुला वचन श्रीधर को भी बुलाया। खुला वचन श्रीधर से निमाई पंडित जाते थे और केले छीन के लाते थे, तो निमाई पंडित ने अपना पूरा उनको भगवान श्री कृष्ण का अपना रूप दिखाया और बोला मुझे क्या चाहिए? क्या तुम्हें स्वर्ग लोक चाहिए, मोक्ष चाहिए, वैकुंठ लोक चाहिए? खुला वचन श्रीधर ने बहुत एक्साइटिंग भी हो गए, ऐसी झोपड़ी में रहते थे जिसमें पहले छत पे छेद ही छेद थे, उनकी छोटी में 22 छेद होते थे कम से कम। उनके घर में केवल एक ही तांबे का बर्तन होता था टूटा फूटा, ऐसे रहता कोई चोर भी आएगा उसको चोरी करने के लिए आएगा, ऐसी बुरी हालत थी। उनको बोला जाए आपको हम स्वर्ग का राज्य दे रहे हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति, सबको रिलेट कर दिया। बोले क्या इच्छा है? बोले मेरी यही इच्छा है कि जन्म जन्म के बाद हर जन्म में निमाई पंडित बनकर तुम मेरे साथ आओ, मेरे सामने आओ, मेरे चुराते भाग रहे हो, ये भक्त की इच्छा है। तो भक्त लोग मुक्ति को रिजेक्ट करते हैं अगर मुक्ति स्वयं भगवान द्वारा भी दी जाए बिना मत सेवनम जना, जब तक उनको सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता वो मुक्ति नहीं चाहते। हाँ सेवा करने के लिए अगर 100 रुपए मुक्ति चाहिए तो ले लेंगे, अगर उसे सेवा नहीं मिलती, अगर भगवान नाम भी जाने वाले वहां जाने की सेवा नहीं है तो उस वहां भी जाना वो स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान के वाचन गोपियां गोपी कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमें 100 रुपये मुक्ति मिल जाए, अगर गोपियां भी भगवान के रूप समान होगी तो रास्ता कैसे होगी? फिर सोचिए बार बार भी 100 रुपये मुक्ति नहीं चाहेंगे तो भगवान सब खेलेंगे कैसे? तो इसलिए उनकी इच्छा ही नहीं है, उनकी केवल एक ही इच्छा है कि हर अवस्था में वो भगवान की सेवा में जुड़े रहे। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। और अगर उनको मुक्ति प्राप्त हो भी जाती है तो भागवत में दूसरे स्तर में वर्णन आता है वैकुंठ लोगों के निवासी कैसे होते हैं, जो भगवान की तरह उनका रंग होता है, चतुर्भुज होते हैं, शंख चक्र गदा पद्मवर्णन चरण पद्म कपड़ा होता है, उसको बाद भी इनको कोई गलतफहमी नहीं होती कि हम भगवान रह गए हैं। और बल जी के पास ऐसा कोई भी ऐश्वर्य नहीं है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम कृष्ण हैं और भगवान के धाम में रहते हैं, सारे के सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन फिर भी भूलते नहीं है कि वो दास है और भगवान स्वामी। दो या तीन अंतर रहते हैं वैकुंठ लोक के निवासियों में और नारायण में, जैसे श्रीवत्स भगवान के वक्ष स्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह होता है जिससे पहचान होती है कि सेवक कौन है और स्वामी कौन है। इसलिए भगवान के भक्त किसी भी अवस्था में मुक्ति की इच्छा नहीं रखते, वो केवल सेवा चाहते हैं बस। भगवान धर्म देते थे जैसे देवी होती जैसे गेहूं को पीसा जाता है, तो भगवान ने भगवान कहा पौधा कर देंगे जो देवी है अगर वो पृथ्वी में रहेगी तभी गेहूं पीसेगी, अगर स्वर्ग लोक में जाएगी तभी गेहूं ही पीसेगी, वो कुछ नहीं करेंगे। तो भक्त लोग कहां ही कहीं भी रहेंगे केवल सेवा ही करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, वो खाली सेवा चाहते हैं, मुक्ति की उनकी कोई अभिलाषा नहीं रहती। और भगवान तो इतने कृपालु हैं, भगवान तो मुक्ति असुरों को दे देते हैं। मध्वाचार्य बता रहे हैं कि भगवान ने कैसे असुरों को मुक्ति दी, निरंतर सोचा करते थे, अतः वैसी ही मुक्ति सारूप्य मुक्ति प्राप्त। कंस को भी भगवान ऐसे रूप प्राप्त हुआ, शाल को भी नरकासुर को भी सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जो कि भगवान से द्वेष करते थे उनको भी भगवान ऐसा रूप प्राप्त हुआ, यहां तक कि अगासुर को भी सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ। अगासुर का वध करते हैं भगवान, खाते कृष्णा मुख में वर्णन आता है कि अगासुर के देह से एक स्पार्क निकला चमकता हुआ और उसके बाद भगवान के शरीर में समा गया। इसके बाद आचार्य बताते हैं भागवत पश्चिम सब में वर्णन आता है कि बाद में अगासुर को सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। क्यों सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई? क्योंकि आचार्य बताते हैं कि भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ अगासुर के मुख में प्रवेश किए, भगवान खेलने के लिए गए, अगासुर ने सेवा कर दी कि भगवान और भगवान के भागवान ने प्लेन ग्राउंड दिया, बस इसी से खुश हो गए भगवान इस सेवा से सर्वे। पूतना भगवान को जहर खाने आई थी लेकिन भगवान ने अपना सुंदर रूप देख के उनके अंदर माधुर्य की भावना थोड़े टाइम में आई, बस भगवान के लिए उन्होंने एक वात्सल्य भाव आया थोड़ा सा, भगवान उनको माफ कर सकते थे सालों की मुक्ति, सालों की सामूहिक मुक्ति पूतना को मिल गई, अगर स्वरूपों की सालों में मुक्ति मिल गई तो भगवान को किसी जीव के अंदर थोड़ा सा भी सेवा की भावना देखते हैं भगवान कितना असंख्य गुणा उसको उसका फल प्रदान करते हैं। तो ये मुक्ति तो असुरों को भी प्राप्त हो जाती है, तो कोई पूछ सकता है असुरों को भी मुक्ति मिल रही है भक्तों को भी मुक्ति मिल रही है, दूसरे अंतर क्या है? क्या जो असुरों को अक्सर मुक्ति मिलती है वो संयोजित मुक्ति मिलती है, क्योंकि सायुज मुक्ति में भगवान के साथ संबंध नहीं स्थापित होता, सेवा नहीं होती, इसलिए अक्सर वहां से गिर जाते हैं। यदि कहा जाए तो दोनों असुर और ये वाह दोनों ही इस भौतिक जगत से छुटकारा पा जाते हैं मुक्ति के द्वारा। जैसे कि बोला जाए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सूर्य की गोष्ठी में जाना और सूर्य ग्रह में जाना दोनों में कितना अंतर है। जो अभक्त होते हैं वो सूर्य की रोशनी में रहते हैं ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवत धाम जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार करते हैं। ये विषय मुक्ति का है और अक्सर लोगों को मुक्ति में इतनी रुचि रहती नहीं, भक्त लोग सेवा में ज्यादा रुचि रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए मुक्ति है पांच प्रकार की मुक्ति क्या है, भक्तों और भक्तों की मुक्ति में क्या अंतर है। इससे चाहे हमें मुक्ति नहीं चाहिए लेकिन प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक भक्त के अंदर ये इच्छा तो होनी चाहिए कि इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त कर भगवत धाम जाए, ये इच्छा होनी चाहिए। और जब कुछ स्थिति हो जाएगी तो बोलेंगे ना हम जन्मनी जन्मनी श्वर भगवान भक्त मुझे भगवत धाम में नहीं जाना चाहिए। ज्योग्राफिकल पोजिशन डजंट मैटर, बहादुरगढ़ हो या गाजियाबाद हो या भगवत धाम हो एक ही समान है, या वृंदा हो एक ही समान है। क्या है सेवा? सेवा ही होता नहीं है, कहीं भी जाएंगे सेवा करनी है। लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए ये टेक्निकल सब्जेक्ट थोड़ा सा क्लैरिटी में होने चाहिए कि भक्तों की मुक्ति में और भक्तों की मुक्ति में क्या होता है। और बहुत बार इससे बहुत ही गहरे विषय बहुत आसान आसान उदाहरणों से समझाते हैं, बोले कोई राज्य में गया या राजमहल में गया दोनों में अंतर है, किंगडम में जाना और किंग के महल में जाना दोनों में अंतर है। किंगडम में राज्य में तो कोई भी चला जाएगा लेकिन राजा के महल में कोई व्यक्ति जा जाएगा जिसका राजा के साथ बहुत गहरा संबंध है, और जब राजा के महल में जाएगा तो सारे के सारे राजा के ऐश्वर्य पर उसका भी अधिकार होगा भोगने को, राजा अच्छा अच्छा व्यंजन खाएगा तो बाकी अपने नौकर को ले जाएगा, तो नौकर जो वहां राजा का रसोईया है वो भी वो व्यंजन खाएगा, जो राजा को चावल करता है उसको भी वही खाने को मिलेगा, ठीक है ना। और अगर राजा का रसोईया बाहर मार्केट में निकलता है किसी की हिम्मत नहीं उसको छेड़ दी उन्हें किसी ने शिकायत लगा दी तो राजा से सीधा उसको दंड मिलेगा, तो उसके अंदर उतनी शक्ति है जितना की राजा को। लेकिन जो बाकी लोग साधारण नागरिक उसके राज्य में रहते हैं उनको इसकी आज्ञा नहीं है कि वो राजा के महल में जा सके, वो राजा के महल में नहीं जा सकते, तो मुख्य मुख्य लोग हैं वही राजा के महल में जा सकते हैं, उसके समीप जा सकते हैं। इसी ढंग से यही अभक्तों और भक्तों की मुक्ति में अंदर। एक और कोई बॉम्बे से दिल्ली आ रहा है ट्रेन में तो दो व्यक्ति है, दोनों कहां जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली आने के बाद एक चला गया साधारण सी धर्मशाला में और एक चला गया मौर्य चरण फाइव स्टार होटल में, दोनों कहां है? दिल्ली में आए, बॉम्बे छोड़कर दिल्ली आए, भौतिक जगत छोड़कर आध्यात्मिक जगत में गए। एक अध्यात्मिक जगत का भी अलग अलग स्तर है, एक धर्मशाला में जा रहे फाइव स्टार होटल में जा रहे, एक खाली सूर्य की रोशनी में एक सूर्य के अंदर सूर्य ग्रह में, तो अभक्तों और भक्तों की मुक्ति में अंतर है। लेकिन भक्त लोग बिल्कुल भी इसकी इच्छा नहीं रखते, सारी सारी सुविधाएं मिल जाए तब भी वो उसकी इच्छा नहीं रखते, वो केवल हर अवस्था में भगवान की सेवा में रख रहना चाहते हैं। अगर हम भगवान की सेवा में रहते हैं तो हम ऑलरेडी लिबरेटेड हैं, ऑलरेडी। प्रभुपाद जी वाले मॉर्निंग वॉक में बताते हैं कि अगर कोई जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, अगर उसका सौभाग्य रहा तो वो एक प्रमाणिक गुरु की शरण में आएगा तो दोबारा से वो परिश अधिकारी बन के भक्ति शुरू कर सकता है। ब्रह्म साक्षात्कार वाले व्यक्ति प्रभुपाद कह रहे हैं उसका सौभाग्य हुआ तो परिश अधिकारी बन सकता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्माना शोषी न कांक्षी सर्व सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ब्रह्म भूत अवस्था में आने के बाद मद भक्ति लभते परा, उसको भक्ति प्राप्त होगी जो कि इससे परे, इससे सुप्रीमियर है। तो जो व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है वो ऑलरेडी मुक्त माना जाता है। तो ये अवस्था है भक्तों की। भागवत में कई स्थानों पर भक्तों को भगवान से संबोधित किया गया, नारद मुनि जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहकर पुकारा। तो ये मायावादी कंसेप्ट नहीं जिनसे हिरण्यकश्यप ने कदा को बोला कि तुमने विष्णु का वध किया है, तुम्हारा बोला प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो सर्व के मुक्ति को प्राप्त हो। तो कई बार भक्तों को महाभागवतों को भगवान कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा क्यों? बड़े आपने भागवत में नारद मुनि को भगवान कह दिया, शिव जी को भगवान कहा गया, ब्रह्मा जी को भगवान कहा। तो प्रभुपाद अलग अलग स्थान में इसके अलग कारण बताते हैं कि भक्तों को भगवान कहने क्यों बताया जाता है। तीन कारण मिले भागवत में। सबसे पहले ये कि भक्तों को भगवान, ब्रह्मा जी को भगवान बताया जाता है क्योंकि वो भगवान के ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। जो भगवान का मिशन है वही भक्तों का मिशन है, जो भगवान की इच्छा है वही भक्तों की इच्छा है, इसलिए उनको भगवान के कहा जाता है। दूसरा, भक्त लोग भगवान की सेवा में इतने रत होते हैं कि वो भगवान कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया था, एक आयरन रॉड अगर फायर में रहे तो वो बिल्कुल अग्नि बन जाती है। और तीसरा, क्योंकि भक्त लोग भगवान की सेवा में इतने लग्न रहते हैं, भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है और षड ऐश्वर्य पूर्ण उनके हृदय में है, इसलिए वो भगवान कहलाते हैं। भगवान का अर्थ है जिसके पास छह ऐश्वर्य हो, या तो किसी व्यक्ति के पास छह ऐश्वर्य होने चाहिए असीमित मात्रा में सीमित समय के लिए, या फिर छह ऐश्वर्य पूर्ण पर भगवान किसी भक्त के हृदय में हो तो व्यक्ति भी भगवान कहते हैं। भगवान हिमसेल्फ इज कॉल्ड भगवान, तो उनके हृदय में स्वयं छह ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है तो भगवान कहते हैं। तो भक्तों को भी भगवान के संबोधन किया जाता है और भक्तों के वही कार्य करते हैं जो कि भगवान करते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज को बताया जा रहा है कि उन्होंने विष्णु को मारा, तो वास्तव में हम देखते हैं कि भक्त लोग भी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तुष्टिताम्। भक्त लोग भी अश्रुओं का श्रृंगार करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। श्रृंगार करने के लिए कई बार वो अस्त्र भी उठाते हैं और कई बार शास्त्रों के द्वारा लोगों का उद्धार करते हैं। कोई उदाहरण है आपके पास कि भगवान के भक्तों ने अस्त्र शस्त्र के द्वारा उद्धार किया हो असुरों का? अर्जुन, अर्जुन भगवान के आगे से जब तीर छोड़ रहे थे तो जैसे ही तीर विरोधी सैनिकों के शरीर को छूता था वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते थे और शरीर छोड़ने से पहले उनको भगवान के मुखार के दर्शन होते थे और वो अपने सुनने को मन प्राप्त किए। तो अगर हम भगवान गुरु के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं तो जो भी हमारे संपर्क में है उसको हम शुद्ध कर सकते हैं और वो अपने स्वरूप को प्राप्त करवा सकते हैं। अर्जुन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा अस्त्रों का श्रृंगार किया और दूसरा उदाहरण अस्त्र शस्त्र हनुमान जी, हनुमान जी को भेजा गया कि जाके देखिए सीताराम जी सीता माता जी के विषय मालूम कीजिए। हनुमान जी पूरा लंका ढूंढा, मालूम चल गया सीता माता यहाँ पे है, सीता जी से मिल भी नहीं है तो हो सकता तो वापस जा सकते थे, उनका मिशन पूरा हो गया था। लेकिन जो भक्त होते हैं वो सेवा में हमेशा रुचि रखते हैं और जो व्यक्ति पूरे हृदय से सेवा करता है उसका ये लक्षण है कि वो हमेशा जितना वो कर सकता है उससे कुछ ज्यादा करेगा। ये एक अच्छे सेवा का लक्षण होता है। जैसे कोई वेट लिफ्टिंग नहीं रहता है तो आप कोच आपसे पूछेगा अभी कितना उठा लेते हो, 100 किलो, ठीक है आज तो 10 किलो उठा लेते, 100 किलो उठा सकते हो, 100 किलो जगह पे आप लगेगा नहीं, आपने एक्सरसाइज की है, 100 किलो उठाते हो चलो 14 उठाओ, ठीक है देखिए 14 से 18 तक पहुंच रहा है। इस ढंग से सेवा अपने कैपेसिटी को बढ़ाता है। हनुमान जी ने बड़ा सेवा कर ली थी, उनको भेजा गया था जाके मालूम करो सीता जी कहाँ पे, हनुमान जी ने मालूम कर लिया। उसके बाद हमने सोचा कुछ और करना चाहिए, यहाँ पे आया हूँ कुछ और भी करना। मैं देखता हूँ कि रावण के अंदर कितनी शक्ति है और देखते रावण को प्रचार करके भी देखे और थोड़ा सा देखें श्रीलंका में है क्या 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 करना शुरू कर दिया उन्होंने। जो अशोक वाटिका था उसको तहस नहस करना शुरू कर दिया, उछल कूद कर दिया, सारी हिंदू तोड़ने लगे। खबर पहुंची रावण के पास, उसने 80,000 अस्त्रों को भेजा, 80,000 अस्त्रों ठोक नहीं था, 80,000 अस्त्र आए। हनुमान ने धार 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 करके सारे 80,000 अस्त्र मार दिए, 80,000 के अस्त्र मार दिए, बड़े हैरान हुए। फिर जो रावण के मुख्यमंत्री थे उसके साथ बड़े महाबली पुत्र आए, उनको कोई नहीं हरा सकता था। हनुमान जी ने एक आयरन की रॉड है धार धार मार के उनको भी मार दिया। रावण ने सोचा बहुत ही महान गंभीर है, तो रावण ने अपना पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसको उठाया वहां के खा दिया, उसने उसका विवाद हो गया। अब फिर रावण को भेजना पड़ा इंद्रजीत, इंद्रजीत आए। तो इंद्रजीत ने एक ऐसा मिसाइल छोड़ा जैसे कि हनुमान जी को पकड़ गया। हालांकि ब्रह्मा जी को वरदान, ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि इनको कोई नहीं पकड़ पाएगा। हनुमान जी ने सोचा मिशन है, भगवान का मिशन है, अपने आप को मैं करवा लेता हूँ, पकड़ा देगा। क्योंकि जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे रावण के सामने कैसे जाएंगे, तो पकड़ के वो सामने लाएगा रावण के सामने। जैसे उन्होंने रावण को देखा, बहुत बड़े एकदम आलीशान सिंहासन पे बैठा है, सोने का मुकुट और उसके शरीर से तेज निकल रहा है, तो हनुमान जी ने सोचा वाह क्या व्यक्तित्व है इसका, क्या पर्सनैलिटी है इसके अंदर, जो इसकी जो व्यक्तित्व है निश्चित रूप से राम जी की विभूति प्रदर्शित हो रही है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, ये अपने व्यक्तित्व का गलत उपयोग कर रहा है, काश ये भगवान की सेवा में जुड़ पाता। देखिए ये होता है हनुमान, जैसे भगवान किसी भी जीव के अंदर अच्छे गुण होते रहते हैं, हनुमान जी भी रावण के अंदर जो कि उनके स्वामी राम के शत्रु थे उसके अंदर अच्छे गुण को देख रहे थे। इसका कितना सुंदर व्यक्तित्व है, इसको बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन इस कृपा का गलत उपयोग कर रहे हैं। उनको उस पर दया भी आ रही थी और उनको प्रशंसा भी कर रहा था। फिर हनुमान रावण ने कहा इनको तो मार दिया जाए, तो भीष्म ने बोले दूत को कभी नहीं मिलते, तो फिर रावण ने उनकी पूछ कर आग लगवा दी। तो हनुमान जी बोला कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी को बांध दिए गए, उनको छुपे आग लगा दी गई। हनुमान जी बहुत अच्छा हो गए, चलो कहाँ कहाँ घुमाओ के, तो घूमते गए। जब सीता वाला को वहाँ चढ़ा तो हनुमान जी की पूछ आग लगा दी गई है, उन्होंने अपने से प्रार्थना की कि हनुमान जी को कोई दुख ना पहुंचे। हैरानी की बात है वहां पूछ में आग लग रही है पर हनुमान जी मेरे बहुत ठंडा ठंडा है। तो फिर हनुमान जी बधो हुए थे, फिर हनुमान सोचा मैं बधा हुआ हूँ अश्वों द्वारा, ये भगवान राम का अपमान है। तो उन्होंने बहुत छोटा रूप करके उस रस्सी में से निकल गए और फिर बहुत विराट रूप धारण करके एक भगवान की छत से दूसरे भगवान की छत में सारे के सारे लंका को उन्होंने जला दिया। तो उनका ये मिशन नहीं था, इन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस की भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए और ये जानने के लिए देखेंगे रावण की कितनी स्ट्रेंथ है, रावण की क्या शक्ति है। और उन्होंने रावण को प्रचार भी किया, उन्होंने बोला देखो आप इतने महान राजा हो, क्यों बेफजूल सीता माता को बुला दो और भगवान की सेवा भी करो, भगवान तुम्हें जरूर शरण दे देंगे, तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देंगे। रावण इतना अहंकार समझा हुआ था उसकी बात को सुना, लेकिन हनुमान जी ने अपना कर्तव्य पूरा किया। तो भगवान के भक्त भगवान के मिशन को पूरा करते जगाई मदारी को चैतन्य महाप्रभु का वध करने वाले थे, नित्यानंद गुरु बोला नहीं उनका वध मत करो, उनका उद्धार किया। और नित्यानंद प्रभु की परंपरा में चलते हुए श्रीला प्रभुपाद जब विदेशों में गए, कितने सिद्धांत था प्रभुपाद जी के पास विदेश में जाते हुए, केवल कोई शिष्य नहीं कोई सुविधाएं नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरे विश्व में प्रभुपाद ने स्थापित, किन किन कठिनाइयों से प्रभुपाद गुजरे, जितने महाप्रभु के विजन को प्रभुपाद ने पूरे विश्व पृथ्वी चिन्हगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार नहीं हुई। और श्रीला प्रभुपाद जब बॉबरी स्ट्रीट में प्रवचन दे रहे थे तो हिप्पी जाकर उनको सुनते थे, हिप्पी सुनते थे तो बाद में प्रभुपाद लीला में देखते हैं कि वो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि प्रभुपाद क्या बोलते। उस समय जो हिप्पी मूवमेंट थी उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि बगावत करो, बस जो कुछ है समाज में चल रहा है सरकार में उसकी बगावत करो। और उनका एक फार्मूला होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी आयु 30 साल से ज्यादा है उस पर कभी विश्वास मत करो, वो तिसिया गए, सटिया गए ना, 30 साल से का बड़ा व्यक्ति तसिया गए थे, ये बोलते होंगे मतलब कि वो पागल हो गया है, उसके तक के अनुसार विचार है, उसकी बात सुननी नहीं। और यहाँ प्रभुपाद की कितनी आयु थी, 25 वर्ष, कितनी आयु थी, 70 वर्ष। और वो अपने माता पिता को नहीं सुन रहे थे, प्रभुपाद भारत से आए थे सन्यासी, और प्रभुपाद बंगाली एक्सेंट में बोलते थे, और प्रभुपाद ऐसी ऐसी चीजें बोलते थे उन्होंने सुनी नहीं हुई, राम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, क्या पता उनको, और प्रभुपाद को बोल रहे थे जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, सुनने नहीं पाते थे। तो सारे के सारी चीजें विपरीत होते हुए भी उनको प्रभुपाद स्वामी जी सुनना बहुत अच्छा लगता था, क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो व्यक्ति है बहुत विशेष है, इसके हृदय में कोई खास चीज है जो किसी और के हृदय में नहीं है, उनके हृदय में क्या था, कृष्ण प्रेम, बिल्कुल स्वार्थ रहित है। तो जो भक्त लोग होते हैं वो भी कृष्ण की तरह सर्व आकर्षक बन जाते हैं, हालांकि किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो फिर भी स्वामी जी के पास जाते थे और उनसे संदेश सुनते थे। और प्रभुपाद ने पूरी शक्ति लगा दी प्रभु चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को स्थापित करने के लिए, किसी भी लिपि में थोड़ा सा भी जोड़ नजर आता था प्रभुपाद उसको हवा देकर बहुत बड़ा असर बना देते। प्रभुपाद ऐसे घूम रहे थे सड़क पे, उनको एक लड़का मिला, बड़े बड़े दाढ़ी, ऐसे मानते थे कौन है तुम, बोलते इंग्लिश का प्रोफेसर है, मैं भारत से लौट के आया हूँ, ईस्टर्न फिलोसफी मेरी बच्ची है। प्रभुपाद ने बोला मेरे को सेवा कर सकते हैं, बोले हाँ, बोले मैंने कुछ टाइप किए हैं इंग्लिश में, इसकी एडिटिंग कर रहा हूँ, उसने एडिटिंग करनी शुरू कर दी, थोड़े से काम है वो हो गया, प्रभुपाद ने और ये लो वो ये लो, हैरान हो गए, बोले इतना काम कैसे करूँगा, बोले आपके मेरे साथ क्यों नहीं रहते, पहला वेब सेंटर खोल दिया, हाइब्रिड बन कर वो बने, वो आए साथ में था ही इंग्लिश आते हैं, प्रभुपाद के साथ ही रहने लगे और वो एडिटिंग करने लगे, इंग्लिश में प्रोफेसर, कुछ नॉलेज नहीं कुछ नहीं, प्रभुपाद ने जो पुस्तक लिखी उसकी एडिटिंग शुरू कर दी, क्या देखिए फिर वो एडिटिंग करने का इतने शुद्ध हो गए। एक बार जब प्रभुपाद वापिस आए तो उन लोगों ने पूरा का पूरा जो छोटा सा उनका सेंटर था पूरा साफ कर दिया, और हाइब्रिड प्रभु जब बॉम्बे में आए थे तो उनको कुछ उन्होंने भगवान के अलग अलग चित्र थे उनके पास, गणेश जी के, दुर्गा माता के अलग अलग चित्र थे, हनुमान जी के, उन्होंने सब प्रभुपाद को प्रसन्न करने के दीवार पे चिपका दिया। जब प्रभुपाद वापस बड़े हैरान हो गए, हनुमान जी का चित्र, शिव जी का चित्र, दुर्गा माता का चित्र, और फिर उन्होंने देखा प्रभुपाद ने एक चित्र देखा, प्रभुपाद ने तरह प्रणाम कर दिया, सब बड़े हैरान हुए कौन है वो, कौन थे, बड़ी हैरानी की बात है कि स्वयं षडभुज चैतन्य महाप्रभु का चित्र लगाया हुआ था। कहाँ हाईवे प्रभु एक इंग्लिश के प्रोफेसर भारत में आए, कुछ चित्र लेकर गए, कहाँ प्रभुपाद ने उनको सड़क पे पकड़ा, कहाँ उनको अपने हस्तलिखित नोट दिए इसकी एडिटिंग करो, एडिटिंग शुरू की, और कहाँ भी चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो गए, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु मिशन को आगे बढ़ा रहे थे, किसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया। जब प्रभुपाद रात और मंदिर में थे ध्रुव स्वामी समाज से प्रार्थना करते थे किस तरह से मैं महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाऊं, तो रूप स्वामी जी से उन्होंने दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम अपने इस मिशन में निश्चित रूप से सफल हो। इसी ढंग से हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं भगवान को अपने गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए। भक्ति ठाकुर जी ने प्रार्थना की तो मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो पूरे इस चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर सके, कुछ भक्तिदान सिंह ठाकुर महाराज प्रकट हुए। तो अगर हम भी हम सब अभी बद अवस्था में है तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में जुड़े और हम अपने स्वरूप को प्राप्त करें। सारूप व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करें, मुक्ति हिंदा अन्यर्थ रूप में स्वरूप होना व्यवस्थित। शिला प्रभुपाद कहते हैं लिबरेशन मीन्स रेनोवेशन ऑफ स्वरूप, मुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप की मरम्मत करना। अभी कोई हमसे पूछे आपका क्या स्वरूप है, आप कौन है, तो हम बोलेंगे मैं भारतीय हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। वास्तव में ये हमारा स्वरूप नहीं है। मुक्ति हमें तब प्राप्त होगी जब हम बोलेंगे जीवन स्वरूप है कृष्ण मुक्ति दास। एक बात बता रहे थे कि इनको कोई व्यक्ति मिला पार्क में तो उनको वो पुस्तक दे देते, उसने बोला एक पुस्तक में लूंगा नहीं, फिर पता इस पुस्तक में है क्या, तो उस बात ने बोला इस पुस्तक में ऐसा है कि अगर मैं आपसे पूछूँ आप कौन है, तो उस बात ने बोला मैं टीसीएस में इंजीनियर हूँ। मैंने पूछा तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपकी माँ पूछी आप क्या बोलोगे, बोले मैं आपका बेटा हूँ। आपकी पत्नी पूछी आप क्या बोलोगे, बोले मैं आपका पति हूँ। बोले अगर आप यही भगवान आपसे पूछे कि आप कौन हो तो आप क्या बोलोगे, कंफ्यूज हो गए। बोले भगवान जब पूछेंगे आप कौन है क्या बोलेंगे, ये पुस्तक में बताया गया है। भगवान पूछेंगे आप कौन है तो हम आप बोलेंगे मैं आपका दास हूँ। जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे कि मैं भगवान का दास हूँ, हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। और ये बात केवल जानने के लिए दीक्षा होगी, नाम दास आगे लग गया पास होगा। इस दासत्व के भाव को अनुकूल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मरम्मत करनी पड़ेगी। बहुत मरम्मत होती है तब जाके हम ये रियलाइज करेंगे कि हाँ मैं भगवान का दास हूँ। जब तक हमारे जीवन का मिशन प्रभुपाद का मिशन नहीं होगा, हम प्रभुपाद जी से और कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कृष्ण से संबंध जोड़े तो कृष्ण के मिशन में हमें सेवा करनी पड़ेगी। कृष्ण का मिशन पूरी गुरु परंपरा का मिशन है। जब बिना मिशन में सेवा किए हम आपसे संबंध जोड़ेंगे नहीं, खाली बातों से काम नहीं चलेगा। भक्ति प्रैक्टिकल सर्विस, इमोशनल सर्विस। हमारे जीवन का उद्देश्य भी कृष्ण के उद्देश्य को पूरा करना, श्रील प्रभुपाद के उद्देश्य को पूरा करना है। श्रील प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी जो बोला प्रभुपाद मैं विवाह करना चाहती हूँ। और बोला ठीक है परमिशन में विवाह करने की एक एक सेंटर खोलना पड़ेगा। उससे प्रभुपाद ये करते थे कोई मुर्गी भी मिला करते विवाह कर सकती है, सेंटर खोलना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम का मतलब है घर में जाकर प्रचार करो, एक सेंटर खोलना। एक और शिक्षक इनका नाम भूल रहे हैं, वो यूरोप में सेवा कर रही थी। उसने एक बार बोल में ऐसे बहुत प्रार्थना की कि बोल में आई मुझे कोई ऐसी सेवा दो मैं प्रभुपाद की खूब सेवा कर सकूं, मैं बिल्कुल यूजलेस हूं, कोई सेवा नहीं करती, प्रभुपाद मुझे कोई ऐसी आज्ञा दे मैं वो प्रसन्न कर सकूं। उसने प्रभुपाद जी मेरे शाम को बुलाया, बोले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ अगर आप बुरा नाम हो। मेरा एकमात्र शिष्य है रशिया में अनंत शांति का, वो क्या तुम वहां जाकर उससे विवाह कर सकते हो। सोचो यूरोप की एक महिला उसको बोला रशिया में जाओ, उस समय का रशिया आपको मानो कम्युनिस्ट कंट्री है, किसी भी स्त्री को यहाँ बोला जाए आप जाओ दूसरे देश में विदेशी से विवाह कर दो, उस माता ने क्या बोला यस बोला। उसने रशिया से इतना शुरू किया और फिर वहाँ रशिया में गई और फिर उसने मान सच विवाह किया, उन्होंने लड़के पचास किया। ये है मिशनरी स्पिरिट। अपने लिए कुछ नहीं, गुरु के आगे है तभी तो सब जुड़ेगा। गुरु की इच्छा कुछ और है, मेरी इच्छा कुछ और है, बोले बस गुरु जी संबंध ही ना कुछ कह रहे हैं। कैसे होगा, कैसे होगा? गुरु से संबंध तभी होगा जब गुरु हमारी इच्छा एक हो। पिता उसी पुत्र को पसंद करते हैं जो पिता की आज्ञा के अनुसार चले। पिता की इच्छा को छोड़, पुत्र की इच्छा को छोड़, सारा बिजनेस चौपट कर दिया उसने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो पिता उसको पसंद छोड़ेगा? केवल औपचारिकता का संबंध रहेगा। वास्तव में हृदय से हृदय को जोड़ना चाहते हैं, एकत्व चाहते हैं इच्छाओं का, तो उसके मिशन में जुड़ना पड़ेगा। प्रभुपाद एक शिष्य थे कर्म मुनि, उन्होंने विवाह किया बाद में संन्यास लेना चाहते थे। संन्यास लेने के लिए रिक्वायरमेंट है कि पत्नी को लेकर देना पड़ेगा आज्ञा देते हुए संन्यास ले सकते हैं। यंग कपल प्रभुपाद ने कर्म मुनि की पत्नी को बुलाया, बोला क्या मुनि संन्यास लेना चाहते हैं तो क्या तुम आगे ले सकते हैं? उनकी पत्नी बोलना शुरू नहीं कर दी, मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, एनीथिंग फॉर यू प्रभुपाद, व्हाट एवर यू से कार्ड से साइन करके दे देते हैं संन्यास। क्या ये मिशनरी स्पिरिट, ये है हमारे स्वरूप की मरम्मत। जब हम ये सोचते रहे मैं तो ये है ये मेरा अपना घर है, हमारा घर कौन सा है, सीधा बोला कहाँ बैक टू होम बैक टू कॉन्टेक्ट, वहां जाना है। उसके लिए इस घर के दरवाजे को खोलना पड़ेगा और इसे बाहर निकलना पड़ेगा। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसी स्थिति में रहे लेकिन कुछ ना कुछ प्रभुपाद के मिशन में हम सेवा अवश्य करें, तभी हमारा प्रभुपाद के साथ हृदय से संबंध जुड़ेगा। केवल जय प्रभुपाद कहने से हमारा प्रभुपाद से संबंध नहीं जुड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे शिष्य अक्सर को सुस्ती रहता है, बुरा मन माने उसको पुश करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। तो प्रभुपाद और भक्तिसिद्धांत महाराज बहुत एक्सपर्ट थे पुश करने में। भक्तिसिद्धांत महाराज किसी भी मठ में जाते थे सबसे पहले उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली रखते थे, जितना पैसा जमा हुआ उठा के दूसरे सेंटर में भेज देते। क्या बोलते थे, मंदिर बनाने के लिए पैसा लेके आओ। मंदिर बनाने के लिए पैसा लेके आते थे, मंदिर नहीं बनाते थे उसको एग्जीबिशन में कहीं लगाते थे। उनके शिष्य को भाई क्या है और खड़े होता करो। जन्माष्टमी आती थी, जन्माष्टमी के लोन लेते थे, जन्माष्टमी के लोन ले लिया, उसके बाद भक्तों में जाओ कलेक्शन करो लोन उठाना, बेचारे सारा भाग दौड़ करके लोन उठाते थे और बनाते थे आज सब आया वाया पैसा आगे ले जाओ। जब तक लोन लगा था बहुत पूर्णिमा आ जाती थी, फिर लोन फिर लोन लिया, फिर बहुत बड़ा सा जन्माष्टमी भाग दौड़ कर रहे लोन उठा रहे, फिर जन्माष्टमी लोन ले लिया। हमेशा आमदन सुस्त नहीं होने, कुछ करना पड़ेगा तब हम गुरु की सेवा करेंगे, हमें जबरदस्ती करनी पड़ती। मायापुर का जब मंदिर बन रहा था तो तमाम स्वामी महाराज जगदान स्वामी महाराज मान थे, उस समय मंदिर बनाने के लिए सीमेंट सरिया रोड़ी मिलती रही थी, सरकार से परमिट लेना पड़ता था और रोड पर रहती थी ट्रेन के वैगन्स में, वैगन्स नहीं होते थे। 1970 के आसपास की बात है, कुछ लोगों को याद होगा कोटा होता था हर चीज का, परमिट चाहिए होता था। बड़ी मुश्किल से तमाचंद गोस्वामी महाराज बड़े टाइम होते भाग दौड़ करके उन्होंने वैगन्स बुक करवाए, सीमेंट आ गया, सरिया आ गया, रोड़ी आ गई। इतना ये महत्वपूर्ण रेयर चीज थी, भक्तों लोग उसके ऊपर सो रहते थे कहीं चोरी ना हो जाए, आस पास इतने चोर रहते थे। उन्होंने क्या किया, बड़े गर्व से उसकी फोटो खींची, ठक 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 सरिये की, सीमेंट की, रोड़ी की, प्रभुपाद को भेजी विदेश में। मेरे प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए, सीमेंट आ गई है, रोड़ी आ गई है, सरिया आ गया। छुट्टा बैठे रहो आई अंडर मेहनत की मायापुर में वो गेस्ट हाउस बनाने थे, कहीं मैनेजर आया, प्रभुपाद ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये मेरे बहाने लगाता है। प्रभुपाद जोर से हंसे, प्रभुपाद बोला बिग बिग मंकी बिग बिग बैडी सीवा ऑन जंग पिंक मेलन कैन मतलब बिग बिग मंकी सब बड़े बड़े मोटे दाने हो, विदेशी लोग बड़ी बड़ी पैली बड़ा सब कुछ है। जब बोला कि सीवा ऑन जंग पिंक करो जैसे हनुमान जी क्रॉस करे जंप मारो फिर जंप मारे फिर चुपचाप बैठ जाएंगे तो क्या फायदा होने मोटे ताजे शरीर का, ऐसे छेड़ा करते हो ऐसे पुश करते। तो बस जीवों को पुश करना पड़ता है, जाओ हमारी इच्छा नहीं होती, हम तो जहां मौका मिले वहां सेटल हो जाते हैं चुपचाप, जहां मौके मिले सेटल हो गए ठाक से बैठ के जहां सेटल है करना 16 माला 4 मिनट बहुत जरूरी है। इस से सेवा करते 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 हम जो पूरा 24 घंटे मानसिक स्तर में रहते हैं, खाइए हो गया वो हो गया, उससे मेरे साथ ऐसा हो गया, उससे मेरा अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इन चक्रों में पड़े रहोगे कि भगवान ना बन जाओगे। सेवा इतनी बड़ी है, सोचने का समय नहीं मिलना चाहिए, इस जन से इतनी सारी सेवा है। तो हम लोगों को एकत्व की भावना सिखानी है, जो गुरु का मिशन उसके साथ अब कह सकते हैं अचानक से शुरू होना नहीं है, सुनने को अच्छा लगता है कि हम सब क्या होते हैं, हमारी कंडीशनिंग है, और जब तक हमें अंदर से कन्वेक्शन नहीं होगा हम ऐसे धातु तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अगर हम प्रभुपाद के हृदय की भावना को जानना चाहते हैं बहुत आवश्यक है प्रभुपाद के पर्पस को तात्पर्य को गहराई से पढ़े और समझे। बिना प्रभुपाद के तात्पर्य को जाने हम प्रभुपाद की भावना को नहीं समझ पाए। प्रभुपाद की जो पर्पस है, रात रात भर जाके प्रभुपाद ने सभी आचार्यों की टीकाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें प्रस्तुत किया है। तो हमको बहुत सावधानी से और बहुत भक्ति की भावना से पर्पस को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए केवल प्रभुपाद की सेवा की भाव से, बस प्रभुपाद ने रात रात भर जाकर एक पुस्तक लिखी है, मेरे लिए पढ़ना अनिवार्य है, सेवा है बस, और कुछ समझ नहीं आ रही। वही प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते हैं कि बात अंदर तो घुसते रहे, इतने सालों से तो पढ़ रहा हूँ क्या फायदा, नहीं सेवा पढ़ो, खाली पढ़ना। और जब हम पढ़ते हैं उसके बाद हम जब प्रभुपाद सेवा के खाना से पढ़े, ये बहुत जरूरी है। कई बार हम पढ़ते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, और जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही नहीं तो बोर हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन में नहीं पढ़ना, विदाउट फ्रूटी मेंटेलिटी सेवा की भावना से पढ़ने का प्रयास करना है, इससे हमें कृपा मिलेगी। और जब हम पढ़ते हैं जंग से, फिर हम कोई एक वाक्य, कोई एक पॉइंट ढूंढ सकते हैं जिसके ऊपर हम कुछ मनन कर रहे हैं, मनन कर सकते हैं और जिसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, उसको हम अलग से अपने शब्दों में लिखें और उसमें मनन करते हैं, एक वाक्य उसमें ध्यान देते हैं, उसमें चित्र करते हैं, फिर हम जानेंगे इन पर्पज से क्या आता है। इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, कोई भी पॉइंट होते हैं। फिर कुछ पॉइंट होने जिसको हम दूसरों से चर्चा कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, प्रीचिंग एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन, इन्हें सर्विस एप्लीकेशन। अगर हम पढ़ें तो धीरे धीरे हम प्रभुपाद की भावनाओं को समझ पाएंगे। ओपनिंग लेवल पे आप पति और पत्नी भी हो, एक साथ रह रहे हो, लेकिन अपनी अपनी बात है, खाली औपचारिकता तो क्या प्रसन्नता होगी हमें, जब से मिलने का संबंध एक दूसरे को जानना पड़ेगा। प्रभुपाद तो क्या चाहते हैं हमसे, वो जानने के लिए प्रभुपाद के तात्पर्य में हम सबके लिए निर्देश है, उसको स्वीकार करना। और जितनी मात्रा में हम सेवा करेंगे उतनी मात्रा में ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। खाली आध्यात्मिक ज्ञान है समझे, खाने के समान है, भोजन खा लिया, लेकिन इस भोजन को पचाने के लिए कुछ पेट में एंजाइम्स चाहिए, तभी वो भोजन को पचा पाएंगे ना। ये जो एंजाइम है हमारा सेवा की भावना, सर्विस एटीट्यूड है। हमारे पास एक कंसिस्टेंट सेवा, हमें अपने वरिष्ठ भक्तों से मिलकर कोई भी एक सेवा ले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बस। और सुंदर अच्छी बात लगती है, हमारे कई भक्त है जो रात को आते हैं, उन्होंने रात को 9 बजे आएंगे, रात के 9 बजे ग्यारह तक पूरा मंदिर साफ करेंगे, एक ही सेवा बस। कोई अभिलाषा नहीं है कि हमें मेडल मिले, हमारे को नाम मिले, हमारा सर्टिफिकेट मिले, हमारा नाम हो स्कोर, कुछ नहीं। इतने सालों से देख रहे हैं कि चल रही 9 बजे रात को 11 बजे तक पूरा सर्दी लंबी बरसात में सेवा करते जाना बस। कई आदमी चुपचाप आके ऊपर चपाती पकाए, छोटी छोटी सेवा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने भी कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट किया है, आप जानकर अफसोस होगा, बोलो हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ही नहीं पड़ा बोले। बड़े बड़े जो हमारे आचार्य हैं उनकी यही सेवा है, दाल रानी के चंदों में चंदन लगाना, बोलो यहाँ का कोई सेवा मिलता है बस। बड़े बड़े इंजीनियर हैं साइंटिस्ट, बोले क्या सेवा जी, मस्जिद दाल रानी के चंदों में चंदन लगाना है, सब कुछ है। कई उनकी सेवा फूल लेके आना है, कई उनकी सेवा माला बनाना है, कई उनकी सेवा दूध उबालना है बस, दूध उबालने की सेवा, कई सेवा खाली पंखा खड़े चुपचाप खड़े पंखा, यही सेवा है बस, और कोई सेवा नहीं है। ये भी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, टर 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 और दुनिया क्या चल रहा है, जीएस क्लियर चल रहा है, बड़े कंप्यूटर वाई फाई वाई सब, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर, बड़ा सिंपल कुछ नहीं, दूध जो रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, खाली यही सेवा है। अब ये नहीं ऐसा कोई बड़ा प्रयत्न करेंगे बाबू जी, हम तो खाली गोबर उठाएंगे, जो हमें सेवा मिले वो करनी है। लेकिन कोई एक सॉलिड सेवा, कंसोलिडेटेड सेवा ले लें और उसमें पूरा हृदय लगा दें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो सेवा की भावना है, जब फिर हम भगवान की परपर्स पढ़ेंगे तब हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। खाली खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, अंदर एंजाइम्स है नहीं, क्या होगा पाचन के एकदम सब कुछ तबियत खराब हो जाएगी। अभी बोलते हैं 2 घंटे से बैठे हुए समझ नहीं आ रहा क्या है, बंद कर दो। सो इस ढंग से हमें अपने स्वरूप को रेनोवेट करना पड़ेगा। प्रभुपाद अपने स्वरूप, हमें अलग अलग रूप क्यों प्राप्त होते हैं, 84 लाख जन्मों के अलग अलग रूप हमें प्राप्त होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो एक शरीर से दूसरे शरीर को आत्मा को ले जाता है। तो रेनोवेट करना स्वरूप का अर्थ है अपने इस सूक्ष्म शरीर को रेनोवेट करना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर में क्या आता है, मन बुद्धि और अहंकार। मन की क्या कार्य है, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। तो ये सारे के सारे तीन कार्य भगवान की सेवा के लिए होने चाहिए। हम सोचे भगवान की सेवा कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं, प्रभुपाद के तात्पर्य के बारे में सोचे, भगवान की नाम की महिमा के बारे में सोचे, है ना, इसका अनुभव करें और इसकी इच्छा उत्पन्न करें कि मुझे सेवाएं बढ़ानी है, मुझे ध्यान पूर्वक जप करना है। ध्यान पूर्वक जप करने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ध्यान पूर्वक जप करना नहीं, ध्यान पूर्वक जप करने की इच्छा। कितनी बार हम सुन चुके हैं कि सुनो सुनो सुनो, जप को सुनो, सुनते सुनते भी सुनते नहीं। हाँ ठीक है, ये कह रहे ना, सुनना है ना, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो ना, तो कोई बात करते हो, ध्यान उठकर आगे बढ़ो। अरे आपने ध्यान दिया जब करते हुए, हमें लगता है सुन रहे हैं, जब व्यक्ति सुनने का प्रयास करता है तब उसको मालूम चलता है मैं नहीं सुन रहा, तब उसको मालूम चलता है। और जो सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे ठीक का, तो हम तो बोल तो सुनो तब मालूम चलेगा, खाली 1% सुना ही नहीं और प्रयास। तो अटेंटिव चैंटिंग का इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाए, ये भी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा से इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये सारी की सारी इच्छा कब उत्पन्न हुई, शुद्ध वासनाएं हमारे हृदय में कभी प्रकट होंगी जब आचार्यगण हमसे प्रसन्न है। हमारे हृदय में काम वासनाएं तब प्रकट होती है जब भक्त लोग हमसे प्रसन्न नहीं है। जब भक्त हमसे प्रसन्न है तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में जनपिंग करने की, अच्छा जन करने की, सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो प्रहलाद महाराज तो बिल्कुल विष्णु के ही समान है, तभी बोले कि आपने मेरे भाई का वध कर दिया। और भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, हर चेतस प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के लिए, बोले कि आप हरि मेघ से गोविंदा हराय कृष्णाय हरि वेद से साथ प्रभाव, कि आप हरि वेद से हैं, क्या मतलब आप हमेशा सोचते रहते हैं कि बद जीवों का उद्धार कैसे हो, और आप अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं, भगवान अपने भक्तों को और प्रभावशाली बनाते हैं, और भक्त भगवान से भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, भगवान देवताओं से भी ज्यादा प्रभावशाली है। भगवान किसी जीव की फ्री विल स्वेच्छा शक्ति में इंटरफेयर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जो गुरु और भक्त हैं वो किसी भी जीव के फ्री विल से इंटरफेयर करते हैं, कुछ करेंगे चलो ये करो, हमारी इच्छा नहीं भी होती हमसे काम करवाते हैं। इसलिए भक्त भगवान से भी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं हमारे इस सूक्ष्म शरीर को बदलने के लिए। तो मन को हम बदल सकते हैं, बुद्धि के द्वारा हम योजनाएं बनाते हैं, तो बुद्धि के द्वारा हमें योजना बनानी चाहिए कैसे मैं ध्यान को जप कर सकता हूँ, कैसे मैं गुरु आचार्य को प्रसन्न कर सकता हूँ, कैसे मैं वैष्णव सेवा कर सकता हूँ, ये प्लानिंग करनी चाहिए। और अहंकार, झूठे अहंकार को हम कैसे रेनोवेट कर सकते हैं, हम झूठे अहंकार को छोड़कर सही अहंकार में अपने आप को स्थित करें। अगर ये स्वीकार कर ले, भक्ति ठाकुर कहते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो सभी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। श्री गोपाल लिखते हैं, अगर हम केवल अपने अंदर दास भाव को अनुकूल कर ले तो भक्ति के नवधा भक्ति के सारे अंग अपने आप में पूर्ण हो जाएंगे। हमेशा अपने आपको याद दिलाते रहे कि मैं दास हूँ, दासों का दास हूँ। तो इस ढंग से हम अपने आप को रेनोवेट कर सकते हैं। गोपाल इतना सुंदर शब्द यूज कर रहे हैं, डिप्रेशन मीन्स रेनोवेशन ऑफ स्वरूप। रेनोवेशन का मतलब है अपने घर को हम रेनोवेट करते हैं, मरम्मत ना, ठोका पीटी ना, मरम्मत ऐसे नहीं होगी, स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। और हर जगह हमें सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, हम प्रयास करें गुरु के मिशन से हमारा एकत्व हो, जैसे हमारे गुरु पत्नी आचार्य का है, तभी हमारा गुरु परंपरा से संबंध जुड़ेगा और तभी हम गॉड भी हो जाएंगे। तो वह कहते हैं हमारा उद्देश्य गॉड बनना नहीं है, लेकिन गॉड भी होना है।